20वीं कारिका को हमें पढ़ना है। इसमें जो बात पीछे आई है कि क्रिया प्रधान हो अथवा अप्रधान हो, उसमें कारक का अन्वय होता ही होता है, और यह सिद्धांत है। इस सिद्धांत को मानने से यदि कहीं पर कोई दोष आता है, जैसे अति प्रसंग नामक दोष आता है, अति प्रसंग का अर्थ मैंने बताया था अति व्याप्ति, अर्थात जहाँ कार्य नहीं होना चाहिए अगर वहाँ कार्य होने लग जाए, कार्य की प्राप्ति हो जाए, तो उसको हम अति प्रसंग या अति व्याप्ति कहते हैं। तो अगर इस तरह से कहीं अति व्याप्ति आती है तो उस अति व्याप्ति को कैसे दूर करना है, वो बात इस कारिका में बताई गई है। तो फिर से एक बार कारिका सुन लेते हैं। कृत्वोर्थाः त्वा तुमुनवत स्यूरिति चेत, माने कृत्वसुच प्रत्यय जो है उसके अर्थ में जो भी प्रत्यय है, वह त्वा और तुमुनवत स्यु, त्वा प्रत्यय की तरह और तुमुन प्रत्यय की तरह अगर होंगे, और इति चेत संति ही क्वचित अति प्रसंगा, और ऐसा मानने पर यदि कहीं अति प्रसंग आता है, अति प्रसंग दोष आता है, तो न उद्भाव्य, तो उस दोष का जो है उद्भावन नहीं करना चाहिए, माने उस दोष को नहीं मानना चाहिए। क्यों? तो अभिधानस्य समाश्रयात्, समाश्रयात् माने आश्रयात्, अभिधान का आश्रयन करके। यह अभिधान का आश्रयन क्या है, मैंने पहले पाठ में भी बताया था कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम, शास्त्र के द्वारा जो सिद्ध भी हो परंतु लोक से विरुद्ध हो, व्यवहार से विरुद्ध हो, तो उसका आश्रय, उसका आचरण नहीं किया जाता है। इसलिए अगर कहीं इस तरह से दोष आता है तो हम वह काम नहीं करेंगे, उस काम को हम छोड़ देंगे। ये तो सामान्यतया अर्थ किया। अब कौंड भट्ट इसकी व्याख्या कर रहे हैं, कहते हैं कि भोक्तुम पाकः, भुक्त्वा पाकः इत्यादो। भोक्तुम पाकः में भोक्तुम में तुमुन प्रत्यय है और पाकः शब्द है वहाँ, भुक्त्वा पाकः में भुक्त्वा में त्वा प्रत्यय है, तो यहाँ जो तुमुन प्रत्यय और त्वा प्रत्यय है, इसका जो अर्थ है तुमुन का अर्थ और त्वा का अर्थ, इसका अन्वय जो है पाकः में जो पच धातु का अर्थ है पाक क्रिया, उसमें अन्वय होता है, जबकि पाक क्रिया यहाँ पर प्रधान है और घय प्रत्यय का अर्थ जो है वह प्रधान है। तो कह रहे हैं कि भोक्तुम पाकः भुक्त्वा पाकः इत्यादि, इन सबों में तुमुन नूलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, इसमें भोक्तुम में जो तुमुन प्रत्यय हुआ है वो इसी सूत्र से हुआ है, तुमुन नूलो क्रियायाम क्रियार्थायाम से, और भुक्त्वा पाकः में जो क्वा प्रत्यय है उसका, उसके लिए सूत्र है समान कर्तृकयोः पूर्व काले। इन दोनों सूत्रों से तुमुन प्रत्यय और क्वा प्रत्यय होते हैं, किस स्थिति में होते हैं, तो आगे बताते हैं कि इति क्रियावाचक उपपदे, क्रियावाचक, वाचक माने बोधक, क्रिया का बोध कराने वाला जो पद है वह यदि उपपद में हो, उपपद में हो माने समीप में हो, तो क्रिया बोधक पद यदि उपपद में हो, समीप में हो, तो क्रियायोः पूर्वोत्तर काले विधीयमाना, क्रियायोः माने दो क्रियाओं के बीच में जो पूर्व क्रिया होती है और जो उत्तर क्रिया होती है, पूर्व क्रिया मतलब पूर्वकालिक क्रिया और उत्तरकालिक क्रिया, यहाँ ये समझिए कि त्वा प्रत्यय जो होता है वो पूर्वकालिक क्रिया में होता है और तुमुन प्रत्यय जो होता है वह उत्तरकालिक क्रिया में होता है। वही कह रहे हैं कि क्रियावाचक पद यदि उपपद में हो माने समीप में हो, तो क्रियायो हो पूर्वोत्तर काले विधीयमाना, हाँ, तो क्रियायो माने दो क्रियाओं के बीच में पूर्वकालिक क्रिया और उत्तरकालिक क्रिया के साथ ये प्रत्यय विधीयमान होते हैं, माने इन प्रत्ययों का विधान किया जाता है। किनका? तो तुमन्नादय, तुमन और अक्त्वा प्रत्यय का विधान किया जाता है, और इसका गुणभूताम ताम आदाय यथा जायन्ते, यहाँ पाकः में जो पच धातु की क्रिया है, पाक क्रिया गुणभूत क्रिया है, गुणभूत क्रिया माने अप्रधान क्रिया है, उस अप्रधान क्रिया का आदाय माने आश्रयन करके, ग्रहण करके, यथा जायन्ते जिस तरह से ये प्रत्यय विधीयमान होते हैं, तथा कृत्वोर्था अपि स्युः, इसी तरह से कृत्वसूच प्रत्यय का कृत्वसूच प्रत्यय या फिर उस टाइप के जो प्रत्यय हैं वो भी होने लगेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए, नहीं होता है मगर होने लगेगा। क्योंकि अगर आप तुमुन प्रत्यय और अक्त्वा प्रत्यय को अप्रधान क्रिया के कारण आप विधान कर सकते हैं, तो फिर कृत्वसूच प्रत्यय या तदर्थ प्रत्यय को अप्रधान क्रिया के आधार पर भी कर सकते हैं। और ऐसा करने पर क्या होगा कि एकह पाकह इत्यत्र, एकह पाकह या जो प्रयोग है इसमें एकस्य सकृच्च, इस सूत्र के द्वारा क्या होगा कि एक के स्थान में सकृत आदेश हो जाता है। एकस्य सकृच्च, सकृत माने होता है एक बार, तो ये जो एकह पाकह में एकह के बदले क्या होगा सकृत आदेश हो जाएगा, तो एकह पाकह के स्थान पर क्या प्रयोग होगा सकृत पाकह प्रयोग होने लगेगा। मैं बता दूं कि इस तरह का प्रयोग होता नहीं है लेकिन होने लगेगा, यही है अति प्रसंग दोष, यही है अति व्याप्ति दोष। फिर कहते हैं कि द्वौ पाकौ, ये जो प्रयोग होता है इसके बदले क्या होगा कि द्वि त्रि चतुर्भ्यः सुच, एक सूत्र है आगे बता रहे हैं, इस सूत्र से क्या होता है द्वि शब्द त्रि शब्द और चतुर शब्द से सुच प्रत्यय किया जाता है, और सुच प्रत्यय का अर्थ होता है बार। द्वि से अगर सुच करेंगे तो द्विह बनेगा, द्विह का मतलब होगा दो बार, त्रि से सुच करेंगे तो त्रिह बनेगा उसका अर्थ होगा तीन बार, चतुर शब्द से सुच करेंगे तो चतुह होगा उसका भी अर्थ होगा चार बार। तो ये जो द्वित्री चतुर्भ्यः सुच है इससे भी क्या होगा द्वौ पाकौ में द्वि शब्द के से सुच प्रत्यय होने लगेगा, त्रयः पाकाः यहाँ भी त्रि शब्द से सुच प्रत्यय होने लगेगा, चत्वारः पाकाः यहाँ भी चतुर शब्द से सुच प्रत्यय होने लगेगा। वही कहा कि द्वौ पाकौ त्रयः चत्वारः इत्यत्र द्वि चतुर्भ्यः सुच, माने इससे सुच की आपत्ति होगी, माने सुच का अति प्रसंग होगा। फिर कहते हैं कि पंच इत्यत्र कृत्व सुच स्यात्, ऐसे ही पंच पाकाह ये अगर प्रयोग है तो पाकाह में जो पच धातु की अप्रधान क्रिया है पाक क्रिया उसके योग रहने पर क्या होगा कि यहाँ भी पंचन शब्द से कृत्व सुच प्रत्यय होने लगेगा। कृत्व सुच प्रत्यय करने का सूत्र इन्होंने नहीं दिया है, आगे दिया है, आगे देखिएगा कि आगे है के चित्तु करके कि संख्याया क्रियाभ्या वृत्ति गणने कृत्व सुच, तो इसी से कृत्व सुच प्रत्यय पंचन शब्द से होने लगेगा, तो पंच कृत्व यह प्रयोग बनेगा। वही कहते हैं कि ये सब होने से क्या होगा तथा च सकृत पाक माने एकह पाक के बदले सकृत पाक प्रयोग की आपत्ति होगी, दो पाकों के बदले द्विह पाकौ इस तरह से प्रयोग द्विह पाक इस तरह से प्रयोग होगा, त्रयः पाक के बदले त्रिह पाक ऐसा प्रयोग होगा, चत्वारः पाक चत्वारः पाक के बदले चतुः पाक ऐसा प्रयोग होने लगेगा, तो द्विस्त्रि चतुः पाक इत्यादि आपत्ति ही इस तरह की आपत्ति होने लगेगी, माने अतिव्याप्ति दोष होगा अति प्रसंग दोष होगा। इस पर कहते हैं कि इति चेत माने इस तरह की अगर आपत्ति पूर्व पक्षी दे रहा है तो उस पर सिद्धांत बाल माने वैयाकरण कहते हैं इति चेत इष्टापत्ति, कि ये जो आप आपत्ति दे रहे हो कि द्वौ पाकों के बदले द्विह पाक त्रयः पाक के बदले त्रिह पाक ये प्रयोग होने लगेगा, एकह पाक के बदले सकृत पाक प्रयोग होने लगेगा, ये आपत्ति होगी, तो ये आपत्ति मुझे मंजूर है, ये आपत्ति हो जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर व्याकरण सम्मत ये बात है, शास्त्र सम्मत ये बात है तो ये बात हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं। किसी ने कहा कि उसके घर मत जाओ नहीं तो लड्डू खिला देगा, अब जिस कहने वाले ने तो ये कहा कि लड्डू खिला देगा मतलब आपत्ति दिया, तो जाने वाले ने कहा कि ये जो आप आपत्ति दे रहे हैं लड्डू खिलाने वाली आपत्ति ये मुझे कबूल है, इसी को कहते हैं इष्टापत्ति, जो आप कोई आपत्ति दे रहे हैं और वह अगर आपको कबूल हो उसको हम इष्ट आपत्ति कहते हैं, ताकि ये जो आपने कहा आपत्ति दिया कि इस तरह के प्रयोग होने लगेंगे द्विपाक त्रिपाक चतुः पाक पंचकृत्व पाक यह प्रयोग होने लगेगा, तो ये इष्टापत्ति है माने ये आपत्ति हमें स्वीकार्य है। कैसे, तो कहा कि पाणिनी ने द्विर्वचनम ऐसा प्रयोग किया है, तो द्विर्वचनम इत्यादि निर्देशात, यहाँ द्विर्वचनम में भी द्विवचने नहीं कह करके द्विर्वचनम कहा, माने द्वि शब्द से सूक्ष्म प्रत्यय का प्रयोग किया गया। तो जब पाणिनि ने ये प्रयोग किया तो इसके कारण से अगर द्विह पाका यह प्रयोग होता है मार्केट में तो वो मुझे कबूल है, मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे कहते हैं अति प्रसंगस्तु अनभिधानात न इति आह अतीति, कहा कि इसका अगर मैंने जो आपत्ति दी उसको आपने कहा कि ये हमें इष्ट आपत्ति है, माने ये आपत्ति हमें कबूल है, और ऐसा अगर कबूल करेंगे तो फिर जो है ना यहाँ तो आपको प्रमाण मिल जाता है द्विर्वचनम पाणिनि का प्रयोग, तो आपने कबूल कर लिया। मान लीजिए कहीं प्रमाण न मिले और इस तरह का अति प्रसंग हो तो आप क्या करेंगे? तो उसी के लिए कहते हैं कि अति प्रसंगस्तु अनभिधानात्मा, ताकि अगर इस तरह का अति प्रसंग होता है तो हम वहाँ कहेंगे कि अनभिधानात न, माने अनभिधान होने के कारण यह अति प्रसंग नहीं माना जाएगा। ये अनभिधान क्या है? तो प्रयोग करने के लिए जो मान्य नहीं होता है उसको अनभिधान कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, प्रयोगाय यत मान्यम न भवति तत अनभिधानम कथ्यते, प्रयोग के लिए जो मान्य नहीं होता है, स्वीकार्य नहीं होता है, उसको अनभिधान कहते हैं। तो प्रयोग के लिए मान्य नहीं होता है, मतलब लोक में व्यवहार में मान्य नहीं होता है, अगर व्यवहार में मान्य नहीं है तो वह अनभिधान कहते हैं उसको, और अनभिधान होने के कारण अतिव्याप्ति दोष जो है उसका वारण हो जाएगा। माने जहाँ पर अतिव्याप्ति हो रही होगी वहाँ से हम उस सूत्र की प्राप्ति को खत्म कर देंगे, उस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होने देंगे। तो अति प्रसंगस्तु अनभिधानात्ना, अति प्रसंग अगर कहीं होता है तो अनभिधान मान करके वहाँ पर अति प्रसंग नहीं होगा, माने अति प्रसंग का वारण हो जाएगा। इसका उदाहरण देते हैं कि नहीं बचि ही अंति पर प्रयुज्यते, अनभिधान होने के कारण ही बच परिभाषने धातु है जिसका बक्ति रूप बनता है, बक्ति बक्ता, तो एक वचन में बक्ति बनता है लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में, द्विवचन में वक्ता बनता है, लेकिन बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है। जब शास्त्र सम्मत है, शास्त्र के अनुसार पाणिनि व्याकरण के अनुसार बहुवचन में भी प्रयोग होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में जो है बच धातु का झी प्रत्यय में प्रयोग नहीं होता, इसीलिए अभियुक्त लोग कहते हैं, अभियुक्त माने संबंधित आचार्य लोग कहते हैं कि नहीं बचि ही अंति पर प्रयुज्यते, माने बच धातु जो है अंति परक प्रयोग प्रयुक्त नहीं होता है, माने बच धातु जो है वो झी प्रत्ययांत के रूप में कहीं प्रयुक्त नहीं होता। इति अभियुक्त उद्दित्या, इस तरह से जो अभियुक्तों ने कहा है वो कैसे कहा है? तो अनभिधानात ही कहा है, माने इस तरह का अभिधान नहीं है, इस तरह का व्यवहार में प्रयोग नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि नहीं बची ही अंति पर प्रयुज्यते, कि बच धातु जो है अंति परक प्रयुक्त नहीं होता, बच धातु का बहुवचन में प्रयोग नहीं किया जाता। तो इति उक्त रीत्या समाधेयम, का कि इसी तरह से जो है अगर कहीं अति प्रसंग होता है तो समाधेयम माने समाधान करना चाहिए, अति प्रसंग का निवारण करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से दीक्षित जी ने कह कर कौंड भट्ट ने और दीक्षित जी ने कह करके फिर आगे किसी आचार्य के मत का मत बता रहे हैं, केचित्तु कह करके कि कुछ आचार्य कहते हैं कि संख्याया क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत्व सुच इत्यत्र क्रियाग्रहणम व्यर्थम, ताकि ये जो सूत्र है इसे कृत्व सुच प्रत्यय होता है, क्रिया का अगर अभ्यावृत्ति गणन हो, अभ्यावृत्ति कहते हैं पुनः पुनः को, बारंबार को, माने बारंबार अगर क्रिया हो तो वहाँ पर संख्या शब्द से, संख्यावाची शब्द से कृत्व सुच प्रत्यय होता है, ये इस सूत्र का कहना है। तो इस सूत्र में कुछ आचार्यों का कहना है कि क्रियाग्रहणम व्यर्थम, कि इस सूत्र में क्रियाग्रहण नहीं करना चाहिए, क्रियाग्रहण जो किया गया है वह व्यर्थ है, निरर्थक है, क्यों कि तस्या एव अभ्यावृत्ति संभवेन सामर्थ्यात तल्लाभात, ताकि ये जो सूत्र में अभ्यावृत्ति गणने ये जो कहा गया है ना, तो अभ्यावृत्ति जो है वह क्रिया की ही होती है, किसी दूसरे की नहीं होती। तो सूत्र में केवल अगर कहें कि संख्याया अभ्यावृत्ति गणने कृत सोच, तो अभ्यावृत्ति गणने कहने से ही क्रिया अर्थ स्वतः मिल जाएगा, उसको बताने के लिए अलग से क्रिया ग्रहण जो किया गया है वह व्यर्थ है, क्योंकि अभ्यावृत्ति जो होती है माने किसी आवृत्ति जो होती है, बारंबार जो होती है, वह क्रिया ही होती है। तो तस्याह एव माने क्रियायाह एव अभ्यावृत्ति संभवेन, क्रिया की ही जो है अभ्यावृत्ति संभव है। इसीलिए सामर्थ्यात तल्लाभात, इसलिए सामर्थ्यात माने स्वतः एव तल्लाभात, स्वतः ही जो है क्रिया अर्थ का लाभ हो जाएगा, उसके लिए क्रिया ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। तथा च फिर जब वह व्यर्थ हो गया क्रिया ग्रहण, तो जब कुछ सूत्र में व्यर्थ होता है तो वह ज्ञापन करता है, आप लोग जानते हैं, तो वह क्रिया ग्रहण व्यर्थ होकर के ज्ञापन करेगा क्या कि तथा च साध्य मात्र स्वभाव क्रिया लाभाय तत इति वाच्यम, का कि दो साध्य मात्र स्वभाव क्रिया माने साध्या क्रिया और सिद्धा क्रिया, दो तरह की क्रिया होती है। ताकि साध्या क्रिया का जहाँ पर अभ्यावृत्ति हो वहीं पर जो है कृत सूच प्रत्यय हो, ऐसा क्रिया ग्रहण व्यर्थ होकर के ज्ञापित करता है, ऐसा किसी आचार्य ने कहा। फिर आगे कहते हैं कि न च पाक इत्यादो तादृशी इति न अति प्रसंग, आपने जो द्विपाक त्रिपाक में अति प्रसंग बताया, वो वस्तुतः वहाँ पर पाक में जो पाक क्रिया है वह साध्या क्रिया है नहीं, वह सिद्धा क्रिया है, और सिद्धा क्रिया होने के कारण वहाँ पर न अति प्रसंग, अति प्रसंग नहीं होगा। आपने जो अति प्रसंग की आपत्ति दी थी वो आपत्ति गलत है। हाँ, दुर्वचनम वाली जो बात की थी हमने कि पाणिनि ने दुर्वचनम जो प्रयोग किया है उसके कारण से अगर सूच प्रत्यय होता है द्वि शब्द से त्रि शब्द से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए उन आचार्यों ने ये कहा कि दुर्वचनम इति च द्वि प्रयोगो दुर्वचनम इति व्युत्पत्त्या दुर्वचनेचि इति ज्ञापकम वा आश्रित्य उपादनीयम्, कहा कि दुर्वचनम में भी, वचनम में क्या है, वच धातु से ल्युट प्रत्यय हुआ है तो वहाँ पर ल्युट प्रत्यय का अर्थ प्रधान है, और वच धातु का जो वचन क्रिया अर्थ है वह अप्रधान क्रिया है, तो अप्रधान क्रिया होने के कारण यहाँ पर जो सूच प्रत्यय हम मान रहे थे वो मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर द्विह का अर्थ है द्विह प्रयोग, हा माने दो बार जो प्रयोग जिसका प्रयोग हो उसे हम द्विह कहते हैं, तो द्विर्वचनम का अर्थ है यहाँ पर द्विह प्रयोग, हा माने बारद्वयम प्रयोग, हा ऐसा अर्थ है यहाँ पर, ये अर्थ नहीं है कि दो बार वचन क्रिया, ऐसा अर्थ नहीं कर करके दो बार प्रयोग ऐसा अर्थ है, ऐसा इस व्युत्पत्ति को स्वीकार कर लेने से अति प्रसंग नहीं होगा, माने अप्रधान क्रिया के होने पर भी सूच प्रत्यय मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कहते हैं अथवा, अथवा दूसरा उपाय ये है कि पाणिनि ने जो द्विर्वचनेचि सूत्र कहा है, इस सूत्र में जो द्विर्वचन प्रयोग है उस इति ज्ञापकम वा, मान इसको ज्ञापक मान करके जो है हम यहाँ पर एक जगह द्विर्वचन में जो है सूच प्रत्यय को स्वीकार कर लेंगे अप्रधान क्रिया अर्थ में, लेकिन बाकी जगह जो है इस तरह का सूच प्रत्यय को स्वीकार नहीं करेंगे। इति आहु, इस तरह से उपपादन करना चाहिए। तो दोनों तरीके से इन्होंने कहा, जो आपत्ति दी उस आपत्ति को इन्होंने स्वीकार कर लिया, इष्टापत्ति मान लिया, और दूसरे तरीके से केचित्तु का करके कहा कि ये अति प्रसंग वस्तुतः होगा नहीं, वो जो सूत्र में क्रिया ग्रहण व्यर्थ होकर के कहेगा कि जहाँ साध्या क्रिया हो वहीं पर ये कृत सूच प्रत्यय हो, तो पाकह में सिद्ध क्रिया है इसलिए यहाँ पर अति प्रसंग नहीं होगा। अथवा द्विर्वचनम का जो है अर्थ बदल दिया, कहा कि द्विर्वचनम का अर्थ होगा कि द्विह प्रयोग, और फिर अथवा करके फिर एक समाधान दिया कि द्विर्वचनेचि में ज्ञापक मान करके केवल इस शब्द में हम स्वीकार करेंगे कि यहाँ अप्रधान क्रिया रहने पर भी सूच प्रत्यय हुआ, बाकी जगह जो है यह सूच प्रत्यय नहीं होगा। इस तरह से 20वीं कारिका को हम लोगों ने पढ़ा, आज का पाठ यहीं स्थगित करते हैं।